नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता देगी। राज्य भर में कफ सिरप की बिक्री पर सख्त निगरानी। 350 से अधिक नमूने जांच के लिए भेजे गए। एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त। प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम जारी। 52% पैच वर्क पूरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्य शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए और राज्य की 326 मेधावी बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्मार्टफोन प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत वन कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे वन कर्मियों को आवासीय भत्ता दिया जाएगा जो कठिन परिस्थितियों में राज्य की वन संपदा और वन्य जीवों की सुरक्षा में तैनात हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम चौकियों पर कार्य करने वाले उन वन कर्मियों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, जिससे उनके लिए आवास व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन जाती है। सरकार ने इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा जो जंगलों की सुरक्षा में निरंतर कार्यरत हैं। वित्त विभाग की सहमति से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां यह सुविधा लागू होगी। वन विभाग के कर्मचारियों ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से उन्हें अपने परिवार की देखभाल में सुविधा मिलेगी और वे राज्य की वन संपदा की सुरक्षा में और अधिक समर्पण के साथ कार्य कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जैसी योजनाएं देश के लाखों किसानों का भाग्य बदल देंगी। श्री मोदी ने कहा कि इन योजनाओं से आत्मनिर्भरता, ग्रामीण सशक्तिकरण और कृषि नवाचार के नए अध्याय की शुरुआत होगी।
योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे।
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं और योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने आत्मनिर्भरता के लिए देश की कृषि प्रणाली में तेजी से विकास और सुधार को आवश्यक बताया।
आत्मनिर्भरता मिशन सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
एनडीए शासन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में देश का कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है और अनाज उत्पादन में करीब 90 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है।
फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर वन है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में दोगुना हो गया है।
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए औषधि विभाग राज्यभर में कफ सिरप की बिक्री पर सख्त निगरानी रख रहा है। अब तक 350 से अधिक नमूने जांच के लिए गए हैं, जबकि एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। देहरादून में औषधि विभाग की टीम ने पल्टन बाजार, घंटाघर, ऋषिकेश रोड, जॉली ग्रांट, अजबपुर और नेहरू कॉलोनी क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर्स की जांच की। कुछ स्थानों पर बच्चों की सर्दी खांसी की दवाएं अलग से भंडारित पाई गई, जिन्हें सील कर दिया गया। एक मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया गया और 11 औषधियों के नमूने जांच के लिए गए हैं। ऋषिकेश में औषधि निरीक्षक निधि रतूड़ी की टीम ने 6 औषधियों के नमूने लिए और जिन स्टोर्स में बच्चों की दवाएं पाई गई वहां स्टॉक सील किया गया। हल्द्वानी में 7 मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई और 2 सिरप के नमूने जांच के लिए गए। अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी निरीक्षण कर कुल 3 सिरप के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए। अपर आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में केवल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं ही उपलब्ध हों।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं और क्षतिग्रस्त पुलों का जल्द निर्माण किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। बैठक में बताया गया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की दिशा में अब तक 52% पैचवर्क का कार्य पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी सचिव से अपने अपने जिलों का नियमित भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करने और विकास तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को भी कहा। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार जनता को सुरक्षित और सुविधाजनक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 326 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की प्रथम तीन टॉपर बालिकाओं तथा विकासखंड स्तर के टॉपर बालिकाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि समाज की तरक्की नारी शक्ति से होती है। राज्य सरकार ने महिलाओं को 30% आरक्षण देने के साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, महालक्ष्मी योजना, वात्सल्य योजना और नंदा गौरा योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे प्रदेश की बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद राज्य में बेटियों के लिंगानुपात में सुधार हुआ है। कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने पौड़ी जिले के एकेश्वर और पोखड़ा ब्लॉक के गुलदार प्रभावित गांवों में पिंजरे लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी और वन विभाग के अधिकारियों से बात कर ड्यूला, देवकुंडई और आसपास के इलाकों में तत्काल पर्याप्त संख्या में पिंजरे लगाने को कहा। महाराज ने बताया कि वन विभाग स्थिति पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन कर्मियों को ट्रैंकुलाइजर गन दी गई है, गश्त बढ़ा दी गई है और गतिविधियों की निगरानी के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब भारतीय डाक विभाग ने दोनों संस्थानों की शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक योगदान के सम्मान में उनके चित्रों वाले विशेष स्मारक डाक लिफाफे जारी किए। राज्य अतिथिगृह नैनीताल क्लब में आयोजित नैनीपैक्स कार्यक्रम में लिफाफे जारी किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता देगी। राज्य भर में कफ सिरप की बिक्री पर सख्त निगरानी। 350 से अधिक नमूने जांच के लिए भेजे गए। एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त। प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम जारी। 52% पैचवर्क पूरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्य शीघ्रता से पूरे करने के निर्देश दिए और राज्य की 326 मेधावी बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्मार्टफोन प्रदान किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।